वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं ज़हरा ज़ैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह नमल की आयत क्रमांक 86 की तिलावत सुने।
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو پرکاشمان بنایا کہ اس میں کام کریں؟ نشچے ہی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لے آئیں۔
इससे पहले की आयतों में प्रलय के बारे में कुछ बातें कही गई थीं, ताकि प्रलय का इनकार करने वाले अपने गलत विचार त्याग दें और प्रलय को असंभव न समझें। यह आयत ईश्वर की शक्ति के एक अन्य चिन्ह की ओर संकेत करते हुए कहती है कि क्या तुमने अब तक इस बात पर ध्यान दिया है कि यदि धरती पर सदैव सूरज की गर्मी व प्रकाश रहता तो तुम लोग किस प्रकार आराम करते, या इसके विपरीत अगर धरती हमेशा रात की तरह अंधकार में रहती तो तुम किस प्रकार काम करते, उस स्थिति में पेड़ पौधे किस प्रकार उगते और फलते फूलते, क्या 24 घंटे में अपने ध्रुव पर धरती की परिक्रमा जिसके अनुसार तुम अपने आराम और काम का समय निर्धारित करते हो एक संयोग है?
आज वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो चुका है कि रात का अंधकार मनुष्य की मानसिक व शारीरिक शांति और दिन का प्रकाश विभिन्न क्षेत्रों में उसकी गतिविधियों में मूल भूमिका निभाता है। कुरान मजीद इस प्रकार की आयतें दोहराकर सत्य के खोजी और सत्य को स्वीकार करने वाले इंसानों को प्रेरित करता है कि अपने आसपास की चीज़ों पर दृष्टि डालकर रचयिता के ज्ञान, शक्ति व तत्वदर्शिता पर ईमान ले आएं और अकारण प्रलय का इनकार न करें।
इस आयत से हमने सीखा कि रात दिन की आवाजाही संसार के रचयिता के ज्ञान व युक्ति का एक चिन्ह है। इस पर गहराई से ध्यान देना चाहिए और दिनचर्या के काम हमें सृष्टि में चिंतन मनन की ओर से निश्चेत न कर दें।
प्रलय संबंधी आयतों में सोने व जागने के विषय का उल्लेख इसलिए किया गया है कि हमें इसी दुनिया में मृत्यु और पुनः जीवित होने का अनुभव हो जाए।
मनुष्य के जीवन का कार्यक्रम प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। रात सोने व आराम करने के लिए और दिन काम के लिए। इस आधार पर आधी रात तक जागना और दिन चढ़े तक सोना सृष्टि की स्वाभाविक व्यवस्था के विरुद्ध है।
आइए अब सूरह नमल की आयत क्रमांक 87 की तिलावत सुने।
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ
और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो जो भी आकाशों और धरती में है घबरा उठेगा सिवाय उसके जिसे ईश्वर चाहे, और सब विनम्रता के साथ सिर झुकाए उसके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे।
ये आयत एक बार फिर प्रलय के विषय की ओर पलटती है और प्रलय की एक भूमिका अर्थात सूर में फूंके जाने का उल्लेख करती है। सूर शंख की तरह एक वस्तु होगी जिसमें फूंकने से बड़ी भयंकर आवाज निकलेगी। कुरान मजीद की आयतों के अनुसार दो बार सूर में फूंका जाएगा। पहली बार जब यह संसार समाप्त होने वाला होगा जिसकी ओर यह आयत संकेत करती है, और उसकी आवाज़ सुनकर सभी भय व आतंक का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। दूसरी बार प्रलय आरंभ होने के समय सूर में फूंका जाएगा और उसकी आवाज़ सुनकर सभी मरे हुए लोग जीवित हो जाएंगे और प्रलय में ईश्वर के समक्ष हिसाब किताब के लिए उपस्थित होंगे।
इस आयत में कहा गया है कि जब सूर में फूंका जाएगा तो हर इंसान घबरा जाएगा, लेकिन ईश्वर के कुछ पवित्र बंदे और फरिश्ते इसके अपवाद हैं, और बाद की आयतों में कहा गया है कि वे शांति व संतोष में रहेंगे। उस समय अच्छे बुरे और फरिश्ते सभी मर जाएंगे और ईश्वर की इच्छा के आगे सभी को सिर झुकाना होगा। फिर दूसरे सूर की आवाज सुनकर सभी जी उठेंगे और अपने ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे। हदीसों के अनुसार सूर में फूंकने का दायित्व इसराफील नामक फरिश्ते का होगा, जो ईश्वर का अत्यंत निकटवर्ती फरिश्ता है, और सूर फूंकने के बाद ईश्वर के आदेश से वो भी मर जाएगा।
इस आयत से हमने सीखा कि कुरान मजीद के अनुसार सृष्टि की व्यवस्था का अंत और धरती व आकाश के सभी जीवों की मौत एक भयंकर आवाज सुनाई देने के बाद होगी।
आकाश में भी जीव रहते हैं और धरती वालों की तरह उन्हें भी मरना और प्रलय में उपस्थित होना होगा।
मौत केवल मनुष्य से विशेष नहीं है, बल्कि फरिश्तों समेत सभी जीवों को एक दिन मरना है।
आइए अब सूरह नमल की आयत क्रमांक 88 की तिलावत सुने।
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں جبکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को सुदृढ़ किया। निसंदेह जो कुछ तुम करते हो उससे वो भली भांति अवगत है।
यह आय सृष्टि की एक अन्य विचित्र वास्तविकता की ओर संकेत करते हुए कहती है कि तुम्हारी दृष्टि में पहाड़ स्थिर हैं, जबकि वे भी बादलों की तरह बिना आवाज के अच्छी गति से चल रहे हैं। यह सृष्टि के रचयिता की महानता की निशानियों में से एक है, जिसने अपने ध्रुव पर धरती की परिक्रमा को इस प्रकार निर्धारित किया है कि मनुष्य उसका आभास नहीं कर पाता और हर चीज को स्थिर व जड़ समझता है। प्राचीन समय में आम लोग ही नहीं बल्कि विद्वान भी ये समझते थे कि धरती स्थिर है और चांद व सूरज धरती की परिक्रमा करते हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि पर्वतों का चलना धरती के चलने से अलग नहीं है, अतः धरती भी चल रही है।
कुरान मजीद ने गैलीलियो और अन्य वैज्ञानिकों से लगभग 1000 साल पहले इस बात की सूचना दे दी थी कि जमीन चल रही है, और ये कुरान मजीद के वैज्ञानिक चमत्कारों में से एक है।
पहाड़ भी बादलों की तरह तेजी से चल रहे हैं और अपनी तीव्र गति के बावजूद जमीन की स्थिरता ईश्वर की विचित्र निशानियों में से एक है।
कुरान मजीद के अनुसार ईश्वर ने अपनी सभी रचनाओं को ठोस व संपूर्ण बनाया है और सृष्टि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है।